प्यारे साथियों नमस्कार। आज 2 फरवरी 2017 है और आज के इस afis.com के लाइफ मैनेजमेंट में मैं डॉक्टर विजय अग्रवाल आप सभी का स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज के लाइफ मैनेजमेंट के लिए मैंने जो सब्जेक्ट चुना है, सच पूछिए तो अप्रत्यक्ष रूप से आप लोगों ने ही मुझे इस सब्जेक्ट को चुनने के लिए उत्साहित किया है। दरअसल हुआ यह कि कल हम लोगों ने वसंत के माध्यम से जीवन में संतुलन की भूमिका के बारे में बात की थी। सच पूछे तो मुझे इस बात की बेहद खुशी है और मैं अपने उन सारे मित्रों को विशेष रूप से धन्यवाद देना चाहूंगा, आभार भी व्यक्त करना चाहूंगा कि उन्होंने कल के ही मेल के द्वारा मुझे इस लाइफ मैनेजमेंट के बारे में अपनी प्रतिक्रियाएं प्रेषित कर दी। ये तुरंत का जादू होता है, मतलब उन्होंने सुना और सुनने के बाद तुरंत उस पर अपनी प्रतिक्रिया भेज दी। तो सबसे पहले तो मैं इस उनकी कोशिश की प्रशंसा करूंगा। और मित्रों, जब जिन शब्दों में उन्होंने अपनी बातें कही, मुझे लगा कि अपनी बात मुझे थोड़ी सी और आगे बढ़ानी चाहिए, इसलिए मैंने कहा कि अप्रत्यक्ष रूप से आप ही लोगों के द्वारा दिया गया यह सब्जेक्ट है। फ्रेंड्स, आपने देखा होगा कि कल मैंने वसंत के संदर्भ में सरस्वती पूजन की बात नहीं की थी, वो मैंने जानबूझकर ऐसा किया था। जानबूझकर इसलिए किया था कि मुझे मालूम था कि अगर मैं सरस्वती पूजन शब्द को ले आऊंगा तो जो संतुलन पर जो फोकस होना चाहिए वह मेरा फोकस गड़बड़ा जाएगा, फिर हो सकता है कि मैं डाइवर्ट हो जाऊं और बात फिर उतनी प्रभावशाली रह न जाए। मतलब मैंने अपने आप को बिखरने से बचाने के लिए, या यूं कह लीजिए कि संतुलन बनाए रखने के लिए, जानबूझकर यह निर्णय लिया था कि नहीं, बोलते वक्त मेरे मुंह से यह शब्द न निकले। और शायद वह एक कारण रहा कि टॉपिक बहुत ही फोकस्ड तरीके से आप लोगों के सामने आ सका। मित्रों, आज मैं सरस्वती पूजन को लेकर ही आप सबके सामने अब वसंत के संदर्भ में बात करने जा रहा हूं। मित्रों, जब भी सरस्वती पूजन की याद आती है तो सच पूछिए तो अपने गांव के स्कूल की याद आ जाती है। मतलब देखिए, गांव में कोई ज्यादा प्रोग्राम तो होते नहीं है जैसे कि शहरों में होते हैं कि पेरेंट्स डे हो रहे हैं और गैदरिंग हो रही है और साल भर में एक कोई प्रोग्राम हो रहा है, कुछ नहीं 15 अगस्त और 26 जनवरी के जो राष्ट्रीय पर्व थे ये मना लिए जाते थे। लेकिन हमारे गांव में पता नहीं क्या ऐसी बात थी कि सरस्वती पूजन जरूर मनाया जाता था। और जिस दिन सरस्वती पूजन मनाया जाता था तो घर से जब मैं निकलता था तो रास्ते में एक छोटी सी जगह पड़ती थी जिसके एक साइड में दाहिने ओर, एक लेफ्ट साइड में तो एक तालाब जैसा था, डबरा कह लीजिए, और राइट साइड में कनेर के फूल के पौधे लगे होते थे और उसमें से फिर कनेर के फूल के फूल को फूल तोड़ करके और फिर सरस्वती पूजन में हम लोग लेकर जाया करते थे। बहुत ही गजब का वो छोटा सा ही लेकिन बहुत बड़ा उत्सव हुआ करता था। तो मुझे अक्सर जब भी सरस्वती पूजन की याद आती है तो अपने गांव की याद आ जाती है और अच्छा लगता है। मित्रों, हमारे यहां सरस्वती को ज्ञान की, बुद्धि की देवी कहा गया है, आप इसको बहुत अच्छे से जानते हैं। और भारतीय मेधा की आप विशेषता देखिए, मेधा का अर्थ है उसका जो विजडम है, निर्णय लेने का जो तरीका है, वो देखिए कि उसने और किसी दूसरे ऋतु को सरस्वती की देवी नहीं कहा, वसंत पंचमी को कहा। अब कोई जरूरी तो नहीं कि वसंत पंचमी के दिन ही सरस्वती जी का जन्म हुआ हो, हमने सबको दिन दे रखे हैं। आप देखिए कि महाशिवरात्रि की डेट फिक्स है, राम भगवान कृष्ण की, राम की, सबकी फिक्स है और उन डेट के पीछे बकायदे सोचे समझा विजडम है, प्रज्ञा है उसके पीछे। यानी कि कोई भी डेट किसी को सूझी और उसने दे दिया, ऐसा नहीं है। अब आप देखिए कि सरस्वती पूजन वसंत पंचमी ये क्या है। दोस्तों, अब फिर से आप इसे संतुलन से जोड़ करके देखिए, सरस्वती यानी ज्ञान, बुद्धि, विवेक, यहां तक कि अगर आप उनके हाथ में आपने वीणा थमा दी तो वीणा वादिनी भी हो गई, मतलब एक मूर्धन्य बहुत ही अच्छी संगीतकार। अगर हाथ में कलम कॉपी भी है तो बहुत अच्छी लेखक कवित्री जो भी आप नाम देना चाहें, यानी कि सृजन की देवी। जहां भी ज्ञानात्मक सृजन है वहां सरस्वती है, राइट। तो मित्रों, कल मैंने जो थोड़ी सी आपसे बात कही थी कि जहां संतुलन होता है वहां सृजन होता है, मैं सर्वोत्तम सृजन की बात कर रहा हूं। सबके सृजन के पैरामीटर्स अलग अलग हैं, सबकी क्षमताएं अलग अलग हैं, लेकिन हर कोई अपनी क्षमता के चरम को तब पाता है जब वह संतुलन में होता है। तो दोस्तों, इसे अब आप ज्ञान, सामान्य रूप से ज्ञान या अपनी पढ़ाई पर आप अप्लाई कर दीजिए कि आपकी भी पढ़ाई तब होती है बेहतर तरीके से जब आप संतुलन में होते हैं। आप अपनी जिंदगी के बारे में निर्णय लेना चाह रहे हैं, अब इसको पढ़ाई से हटा दीजिए, इसको फैला दीजिए, चाहे वो व्यवसाय के संबंध में निर्णय है, कैरियर के संबंध में निर्णय है, विवाह के संबंध में निर्णय है, संपत्ति खरीदने के संबंध में निर्णय, जिस चीज के बारे में भी निर्णय हो, आप सर्वोत्तम निर्णय तब ले पाते हैं जब आप संतुलन में होते हैं। यानी कि संतुलन का सीधे सीधे संबंध हमारे ज्ञान और विवेक से है, और सच पूछे तो असंतुलन ही वह तत्व है जो हमारे ज्ञान और विवेक को नष्ट कर देता है, चाहे फिर वह असंतुलन किसी भी वजह से क्यों ना आया हो। ये तो एक तथ्य हुआ दोस्तों कि संतुलन से विवेक और ज्ञान आता है। अब मेरे दिमाग में एक बात आती है कि फिर ये वसंत कुछ समय के लिए ही क्यों होता है? कितना अच्छा होता ना फिर हर समय वसंत ही होता, यानी कि हम हर समय संतुलन में होते, तो क्या ऐसा हो सकता है? तो क्या प्रकृति भी चूंकि हर समय वसंत में नहीं रहती है, संतुलन में नहीं रह पाती है, तो क्या असंतुलन जीवन का अनिवार्य हिस्सा है? बिना असंतुलन के संतुलन की कोई भूमिका नहीं है, उसका कोई अस्तित्व नहीं है या उसका कोई महत्व नहीं है? दोस्तों, यहां मैं एक दो बातें आपसे स्पेशली कहना चाहूंगा, जो सच पूछे तो मेरे आज के इस लाइफ मैनेजमेंट का एक मकसद ही है। वो यह है फ्रेंड्स कि इस पृथ्वी पर जो आप मौसम देखते हैं और ऋतुएं देखते हैं, इसका अपना एक मैकेनिज्म है, लेकिन उस मैकेनिज्म के तहत ही धरती के कुछ ऐसे हिस्से हैं जहां हर समय वसंत रहता है। धरती के ऐसे कुछ हिस्से हैं, अब तो वो चीज खत्म हो गई क्योंकि सारी चीजें अब अप्राकृतिक होती जा रही हैं, क्योंकि ये तो मैं प्रकृति की बात बता रहा हूं। अदरवाइज हमारे ही अपने देश का जो बेंगलोर था, जिसे आज हम बंगलुरु कहते हैं, वहां हर समय वसंत ही रहता था। फूलों का शहर कहा जाता है क्योंकि जहां वसंत होगा वहां फूल होंगे। वहां का टेम्परेचर बिल्कुल एक आदर्श किस्म का होता था, थोड़ा बहुत वेरिएशन आता जाता था गर्मी या ठंड के दौर में, अदरवाइज वसंत का ही मौसम रहता था। यानी कि हम ये मान करके चलें कि इस धरती पर कुछ जगह ऐसी भी हैं जहां हर समय वसंत रहता है, राइट। इसका मतलब है कि अगर धरती पर प्रकृति में कुछ ऐसी जगह है जहां हर समय वसंत रहता है, तो क्या ऐसा नहीं हो सकता कि हमारे अंदर भी हर समय वसंत बना रहे, यानी कि हम भी अधिकांश समय तक संतुलन की स्थिति को अपने अंदर बनाए रख सकें? तो यदि यह संभावना है तो वो कहां है? क्योंकि देखिए, अगर प्रकृति में बेंगलुरु जैसी जगह है रही है, कह लीजिए अब तो भीड़ भाड़ हो गई, दुनिया भर के दूसरे संकट आ गए तो बात खत्म हो गई है। अभी और भी दूसरी जगहों पर ऐसी जगह है जिसमें यूएसए का, खासकर जो सैन फ्रांसिस्को वाला जो एरिया है, कैलिफोर्निया स्टेट है, वो लगभग इसी तरह का माना जाता है, जहां का मौसम हमेशा वसंत नुमा है, जहां आपका सिलिकॉन वैली वगैरह है, तो दुनिया में ऐसी जगह है। तो हमारे लिए क्या एक मोड ऑफ कंडक्ट हो सकता है, कह लीजिए, या क्या तरीका हो सकता है कि हम भी अपने अंदर के संतुलन को बनाए रख सके? क्योंकि ये तो हमारे हाथ में है कि हम ऐसा कर सकते हैं। तो मित्रों, यहां पर मुझे फिर सरस्वती पूजन याद आता है। यानी कि यदि सच में हमारे अंदर ज्ञान आ जाए, विवेक आ जाए, बुद्धि आ जाए, तो ये सरस्वती हमेशा हमारे अंदर यदि विराजमान हो जाए, तो ये वसंत हमारे लिए हमेशा हमेशा के लिए हमारा हो जाएगा। सीधी सी बात है, ज्ञान का आना, विवेक का जागृत होना ही वसंत है, क्योंकि वसंत करेगा ही ऐसा। और अगर वसंत का सीधा संबंध सरस्वती से है, तो सीधी सी बात है कि हमारे आंतरिक संतुलन का सीधा सीधा संबंध ज्ञान से है। मित्रों, यहां मैं एक बात और आपको ऐड करना चाहूंगा कि जब हम लोग बड़े हो गए, तब बहुत जगह ये बात सुनने को मिलती थी कि जो वसंत है वो निराला जयंती के नाम से भी कई जगह मनाई जाती है। साहित्यिक जगत में निराला जयंती, एक महाप्राण सूर्यकांत त्रिपाठी निराला हुए हैं, जो हिंदी के बहुत महान कवि हुए हैं। अगर आपने महादेवी वर्मा जी का नाम सुना हो, सूर्य पंत जी का नाम सुना हो, तो निराला जी का भी नाम जरूर सुना होगा। ये सब एक ही साथ के लोग हैं। तो वसंत पंचमी को उनके जन्मदिन माना जाता है। उन्होंने सरस्वती, मां सरस्वती के आराधना में एक बहुत अच्छा गीत लिखा था, वीणा वादिनी वरदे, आपको याद होगा, सुना भी होगा, वीणा वादिनी वरदे, वीणा वादिनी वरदे। उसमें आप देखेंगे कि जो उन्होंने शब्द यूज किए हैं निराला जी ने, वो क्या है, नव गति नव लय ताल छंद, नव नवल कंठ, नव जलद मंद्र रव, नव नभ के नव विहग वृंद को, नव पर नव स्वर दे, वीणा वादिनी वरदे। दोस्तों, इसमें हर जगह नव है, नव नव नया। इसका मतलब है कि जो वीणा वादिनी है, जो सरस्वती है, वो आपको हमेशा नया देती है। तो ज्ञान क्या है, इसको समझने की कोशिश कीजिए। ज्ञान ये नहीं कि जो हमने 20-25 साल पहले पढ़ लिया, अपने दिमाग में जो परसेप्शन बना लिए, धारणाएं बना ली, बस उन्हीं को लेकर के जी रहे हैं, ये ज्ञान नहीं है। अगर ये ज्ञान है तो बेकार का ज्ञान है, ये कूड़ा कचरा है। इसका हमने नवीनीकरण नहीं किया। आपको पासपोर्ट का भी नवीनीकरण कराना पड़ता है, आप कपड़े भी कुछ समय के बाद बदल देते हैं, जूते भी बदलना होता है, दाढ़ी रोज बनाते हैं, बाल कटवाते हैं, लेकिन इस दिमाग में जो पुरानी चीजें पड़ी हुई हैं उसका क्या, घर भी रोज कचरा साफ करते हैं घर का कि नहीं? घर में जो कचरा घर होता है उसको भी साल में आप एक बार साफ कर लेते हैं। व्हाट अबाउट आवर माइंड, क्या यहां कुछ नएपन की जरूरत नहीं है? मित्रों, ये हमारी जिंदगी का सबसे बड़ा संकट है। सबसे बड़ा संकट यह है कि हम अपनी ही धारणाओं के गुलाम बन जाते हैं। हम ये समझ ही नहीं पाते कि पुरानी चीजें सड़ रही हैं, गल रही हैं। प्रकृति में भी हर साल नवीनीकरण हो रहा है, सारी चीजें नई हो रही हैं। वसंत ने पूरे पुराने पत्तों को गिरा करके नई कोपले शुरू कर दी हैं, पेड़ों के साथ मिलकर के पेड़ नए बन रहे हैं, सब चीजें नई बन रही हैं, फसल नई कट रही है, लेकिन हम हैं अपनी धारणाओं को नया नहीं कर रहे हैं। तो वो दोस्तों, बाहर सब कुछ नया हो रहा है, धारणाएं हमारी पुरानी बनी हुई हैं, तो आपको नहीं लग रहा है कि संतुलन खत्म हो गया? सोच करके देखिए, बाहर सब कुछ बदल रहा है, नया हो रहा है, और हमारे खोपड़ी में सारी चीजें पुरानी भरी हुई हैं, असंतुलन पैदा हो गया। तो जब अंदर असंतुलन पैदा हो गया तो वसंत चला गया, अब वसंत नहीं है। तो दोस्तों, निराला जी ने जो नए 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 की बात कही है, उसके पीछे आप सोच करके देखिए कि उनका कितना जबरदस्त विजडम काम कर रहा होगा, कितनी जबरदस्त प्रज्ञा की बात वो कर रहे थे। तो मित्रों, अब वक्त हो चला है, तो मुझे लगा कि आप लोगों के उत्साह को और प्रोत्साहन को देखते हुए कि नहीं, मुझे इस पर एक लाइफ मैनेजमेंट में और बात करनी चाहिए, और दोस्तों उसके आधार पर मैंने कुछ बातें आपके सामने रखी हैं। तो अब आज के लाइफ मैनेजमेंट को यहीं समाप्त करने की इजाजत चाहूंगा। नमस्कार।